राम। यह प्रवचन परम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 मई 1993 को सायं लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्यवरीरदावाक् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण।
भगवान बता देते तो युधिष्ठिर राजा कभी नहीं होते, वो कर्ण को ही राज्य देते और कर्ण विरुद्ध को राज्य देगा तो पांडव दुख ही पाते सदा उम्र भर। ऐसा कर्ण ने कहा कि महाराज ये बात युधिष्ठिर को मालूम नहीं होनी चाहिए, अगर मालूम होगी तो उम्र भर पांडव दुख पाएंगे। ये कर्ण मना किया, मालूम है पंडित भाई कर्म है तो राज कभी नहीं सुना, युधिष राज कभी नहीं सुना। ये बात भीष्म जी को मालूम था, सूर्य भगवान को मालूम था और कुंती को मालूम हो गया था। जो देखा जो शस्त्र परीक्षा हुई ना उसे कुंती को ही मालूम हो गया। कुंती के सामने का ये राधा का पुत्र शुद्ध है, वो कोई अधिकार नहीं सामने, बहुत कुंती और दुख हो गए, बोल नहीं सके समाज में जाते। ये तो असली से पुत्र है राधा का, थोड़ा ये कर्ण को सूर्य भगवान से मालूम हुआ। सूर्य भगवान ने स्वर्ण दिया, वो सूर्य भगवान को अपना इष्ट देव समझता था और सूर्य पिता थे, ये भगवान सूर्य की पूजा करते थे, सूर्य को इष्ट देव मान कर।
कापी पर राम नाम लिखने की अपेक्षा माला फेरना ठीक है या कापी पर राम नाम
काम लेना था? कापी तो लिखा बढ़िया,
माला में मन न लगे तो भी कापी पर लिखना ठीक है क्या?
हाँ, माला में तो मन लगाओ कोई हल बोली, पर कापी पर दृष्टि भी लगेगी, हाथ भी लगेगा, मन भी लगेगा, जवाब भी लगेगी।
सुंदरकांड का पाठ करने से पहले किष्किंधा कांड के कुछ दोहों का पाठ करते हैं।
हाँ ठीक है,
ये क्या आवश्यक है?
आवश्यक है, जब उनकी वजह से आया वहां से आया है, पहले वो अपना अपना मन बताया है, फिर उसमें जामवन का तुम तुम सागर हो बनवाना, भवन तुम्हें पर पवन समाना, ये तो पहले पढ़ने से
कौन से
दो
इसे करना चाहिए?
वो दो गिनती है,
29
30 लोग का है, 30 लोग का किसका करना है?
30
60 दो सुंदर करना है।
आठवें अध्याय का 12वां 13वां श्लोक की ओंकार और निर्गुण का ब्रह्म का चिंतन किस तरह करना चाहिए, ये पूरे श्लोक का साधन बताने का कष्ट करें।
पूरे श्लोक का साधन आता नहीं है, सर्व द्वारा संयम मनो सिद्धि निरुद्ध मूर्धा आधार आत्मन प्राणम आस्त योग धारणम। फिर ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण यह प्रयाग्री से मध्वामी यात्री नास्तिक संशया।
प्रयाति
परमान था तेरी बात है। और क्या है
ओम के
आगे
जिससे
चलन चेता सकता है सौ पंद्रह सोलह और ये तीन है ग्यारह बारह बारह ग्यारह बारह तेरह तो उनमें प्राण है उनको प्राण को मूर्धन्य आधार आत्मा ने प्राण अपने प्राणों को मूर्धा में स्थापन करके तो मूर्धा में स्थापन कैसे करते ये हमें याद नहीं है विधि। फिर व्याहरण मां मनुष्य ओम व्याहरण व्याहरण नाम है उच्चारण का दी आम पूर्व के लिए धातु का अर्थ उच्चारण हो रहा है याद रहा व्याहरण व्याहरण भी मन कथे थे धातु का तो ओम व्याहरण मन बोल करके तो बोलेगा क्या याद मान से ही बोलना होगा जब प्राण मूर्धा में स्थित हो गए और मन को हृदय स्थापित कर दिया तो प्राण और मन के बिना ओम ऐसा उच्चारण नहीं होगा। प्राण होने से मन लगने से होता है तो मन स्थापित कर दिया मूर्धा में हृदय और मूर्धा लगा दिए प्राण तो उसमें मानसिक उच्चारण होगा जबान से उच्चारण नहीं होगा। और ध्यान महामन और मेरा स्मरण चाहिए सत्यदान भगवान एक तत्व ही परिपूर्ण है ऐसे स्थित होकर के और उसे चिंतन करे वो परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये अंतकाल के समय का उत्तर है। सात प्रश्न थे उसमें अंतकाले तक कथन जीव से नीता तभी ये सातवां प्रश्न है तो अंतकाल की गति का वर्णन है अगर जितना है रवि सगुण निराकार कैसे है निर्गुण निराकार कैसे है सगुण साकार कैसे है इनके तीन 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 श्लोक है जो वहां जाकर आता क्यों है तो कहा बिंद लोग तक अवधि वाले हैं तो अवधि बताने वाले तीन श्लोक है और तीन श्लोक आगे अनन्य भक्ति के हैं बीस इक्कीस बाईस इसके बाद जब लौटकर आते हैं और लौटकर नहीं आते हैं इस मार्ग का वर्णन है ऐसा आसमान जाय हुआ है। तो खास बात है ये परमात्मा समझने परिपूर्ण है जैसे छठे अध्याय में कहा आत्मसंस्थम मना कृष्णा न किंचन भी चिंतित वो अचिंत का ध्यान है मन को लगा दे परमात्मा में बंधन तो वो मन लगा कर लेना ऐसा तात्पर्य है मन वहां लगाने का आग्रह नहीं मन एक सत्यनारूप परमात्मा ही है उसी तरह कोई सत्ता ही नहीं है ऐसे मन में निष्ठ कर निष्कर ये मन होगा हुई ऊपर में आत्मसंस्थ कुछ भी चिंतित न करे चुपचाप और यहाँ ओम ज्ञान और ओम अक्षर का उच्चारण करे तो ओम का उच्चारण निर्गुण निराकार में होता है ये अक्षर वेद विजो बनती देवता लोग अक्षर कहते हैं यदि छो ब्रह्म शरीर दी पत्ते पदम संगे तो ग्यारह बारह तेरह ये श्लोक होती है। इन आप शंका हो बोलो बस ये बात है और बोलो नारायण गोविंद नारायण वासुदेव नारायण 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 राम राम राम।
सीता जी को शिक्षा मिली थी सास ससुर गुरु सेवा करे हूँ पति रुख लखी आय सु अनुसरो पति का रुख विपरीत हुए माता पिता की ऐसी परिस्थिति में पत्नी क्या करे
पति का रुख माने पति की आज्ञा मुख्य होती है प्रशासन की सेवा करना मुख्य होता है। अपना आचरण, अपना चलन उसका पति के रूप के अनुसार, मानो पत्नी का आधा अंग हो गया, पति जैसे करे वैसे ही करे और सास ससुर की सेवा जरूर करे। तो जो वही में क्या बाधा आई है कि कौशल्या जी ने कहा कि तुम रहो, कौशल्या जी ने रहने की बात कही और पति ने भी रहने की बात कही, परंतु सीता जी रही नहीं। बस दिन तक यहां तक कर दिया कि ये जनकराज पुत्री अगर रह जाए तो मेरे प्राण बच सकते हैं, मैं सुबह हमारा रामलला ही है, ये रामलला का अंग है हमारा, तो ये रामलला है, प्राण बच जाए, इतनी बात ही रही। पर नहीं रही तो क्या, पति का रुख है उनका, पति का रुख इनको रखने का नहीं है, कह तो रहे हैं पर रुख रखने का नहीं है। सीता जी बारे में कैसे लीला होती ना उनके बारे में, मानो रावण को मारने की वो लीला कैसे होती अगर सीता जी को रख लेते तो भक्ति का रुख नहीं था रखने का, परंतु पत्नी के सुख के लिए राम जी अपनी सुविधा छोड़ते हैं कि मेरी सेवा नहीं होगी, अगर सीता साथ रहेगी तो मेरी सेवा बहुत करेगी, परंतु मेरी सेवा की अपेक्षा इसको आराम घर में रहने का है, जंगल में जाने में दुख है सुख नहीं है। राम जी ने बड़ी करड़ी बात कह दी, जो मेरा करा नहीं मानोगे तो अंत में पछताओगे। रावण ले गया था, ऐसी करड़ी बात कह दी। तो भी पति रुख क्या है, पति का रुख तो साथ देना ही है। और वाल्मीकि में लोग करड़ी बोली, सीता जी करड़ी बोली और कहा कि महाराज मैंने रामायण सुनी है, नहीं कई रामायण सुनी है, पर किसी रामायण में ये नहीं आया कि सीता जी को छोड़कर राम जी मनवा सुने, ये नई रीत कह कर दो। राम जी साथ में गए, राम जी के साथ गई सीता जी, तो मैं कैसे रहूंगी यहां। पति रुख लखी आयुष अनुसार हो, तो पति का रुख है वो साथ में रहता है। ऐसा लखन लाल जी के लिए भी राम जी ने कहा कि भैया तुम यहाँ रहो, भरत शत्रु भवन में हमारे घर में ला रहे भरत जी महाराज है, और मैं तुम्हें साथ नहीं जाऊंगा तो राजा जी पर कितना असर पड़ेगा, वो ठीक नहीं होगा। और एक तो बाप के पास रहना चाहिए ना, तो भाई वहां चले गए, हम दोनों भाई दो चले जाए तो प्रजा के पास हो जाएगा, इस बात पर तुम्हें रहना चाहिए। और लक्ष्मण जी के ये धर्म है, तो वो कहा हमारा मंदिर देव के लिए हमारा बजारा हंस का बच्चा करना सूरज को बैठे, ये धर्म ये धर्म उपदेश उस उपदेश दो कीर्ति सुगति सुमति भद्राई जो भी चाहिए, हमें कीर्ति चाहिए, सुगति नहीं चाहिए, सुमति नहीं चाहिए, हमें तो आपका चरण चाहिए, हम किसी को नहीं मानते। मैं किसी को ना माता पिता को मानता हूँ, दूसरे मानता हूँ, सत्य कहता हूँ पिताजी आप तो विश्वास करे, ना तो पति है विश्वास करो, मैं आपको ही मानता हूँ, मैं बाप को नहीं मानता, माँ बाप को नहीं मानता। राम जी ने कह दिया कि जाओ माता से आज्ञा लाओ, तब सुमित्रा के पास गए आज्ञा मांगने के लिए, बोलिए मैं माँ बाप आपको ही मानता हूँ, मेरी क्या सीधा कह रहा है। सुमित्रा ने कहा रामम दशरथम बिद्धि, राम जी को तुम दशरथ का स्वरूप समझो, अरे माम बिद्धि जनकराज को जाओ, ये जनकराज बने आए ना वो मेरा स्वरूप है, तुम्हारे माँ बाप साथ में तेरा क्या बात है, बहुत आनंद की बात है, तुम्हारे ही भाग्य राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य से ही राम जी बन जाए, दूसरे हेतु तो कुछ नहीं, यही तो है ही नहीं, केवल तेरा भाग्य है। नहीं तो हजारों दास दारी सेवा करने वाले तो तेरे इतने को सेवा मिलेगा, सेवा का मौका, ऐसा तुम्हारे भाग्य से जाते अब तेरे जानते। पर वो सुमित्रा बात सुनना शर्मा गई, तो लक्ष्मण देगा कि पुत्र का मोह है, मेरे को मोह करेगी करेगी उनकी ये डरे। माँ तो लक्ष्मण जी की माँ थी, बाबू छोड़ी लक्ष्मण जी की माँ है। वो तो कहते हैं पुत्रवती जुवती जग सोई संसार में, जिसका पुत्र भगवान का भगत हो उससे ही वो बेटे की माँ है, नहीं बेटी का माँ न तो रूपान बने बाज दिया नहीं, पशु है पशु, बेटे की माँ नहीं, बेटे की माँ तो वही है जो बेटे को भगवान में लगा दे। तो तुम बदल करो, मेरा भी भाग्य है, बनाओ भाग्य, इस बात जाओ बेटा राम जी की सेवा करो, मोह के बस में मत होना, कभी ठीक तरह सेवा करना, आज मत करना।
लेकिन भगवती भगवान माँ देवी दुर्गा में पहले पूजा किसकी करनी चाहिए?
देखो इष्ट अलग अलग होता है, ये पांच देव है खास, तीन तो घर घर के शीर्ष भगवान शंकर शक्ति और गणेश, एक सूर्य एक विष्णु भगवान, ये पांच ईश्वर कोटि के देवता है। अब जिसका इष्ट भगवान विष्णु का है तो विष्णु का पूजन पहले करें। मंदिर बनाया जाए तो बीच में विष्णु भगवान का, चारों तरफ चारों का मंदिर, शास्त्र के अनुसार मंदिर निर्माण होगा तो पांचों देवताओं का होगा, चार देवता होंगे एक ईश्वर होंगे। तो वैष्णवों के लिए ईश्वर विष्णु भगवान है, शैवों के लिए शैव शिव है ये ईश्वर है, और गणेश और ये सब देवता है, विष्णु भी देवता है, और शाक्तों के लिए शक्ति ईश्वरी है, वो भी ईश्वर होगी। और चार ऐसे गणपत है उनके लिए गणेश जी महाराज तो ईश्वर है, दूसरी ये देवता है, ऐसे सूर्य के लिए तो जो अपना इष्ट देव है उसी का पहला पूजन होगा। श्री है गणपत है शाक्त है सौर है, विष्णु का भगवान बोलते वैष्णव, सूर्य का भगवान सौर, शक्ति का पवित्र शाक्त, गणपति जी का पवित्र गणपत, ये चार पांच संप्रदाय है।
गुरु जी में और भगवान में दुर्गा में कौन श्रेष्ठ है?
वो तो अपना इष्ट है, जो आप इष्ट समझो उसको लो।
गुरु जी भी साथ में बोल रहे, गुरु जी में गुरु में भगवान में दुर्गा माँ में, इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है?
श्रेष्ठ तो यही हो तो गुरु की महिमा ज्यादा है, पर गुरु में असली गुरु की महिमा ये बनावटी गुरु में नहीं है। गुरु बनाया हमने, बना जो क्या गुरु, गुरु तो जबरदस्ती हो जाता है। देखो पहला बेटा जन्मता है कि बाप जन्मता है, बताओ? पहला बेटा जन्मता है कि बाप जन्मता है? पहले बोल दो, हम बता दें, हम बता देंगे। पहले बेटा जन्मता है पीछे बाप जन्मता है, क्यों? बाप नाम बेटे से है, बेटा नहीं हो तो बाप नाम होता ही नहीं उसका, जिसका बेटा होने से बाप होता है। ऐसे गुरु नाम किसका है कि जो वास्तव में चेले का गुरु बने तो उसको परमात्मा तत्व की प्राप्ति करा दे तब वो गुरु होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसी के लागू पाए तो बनिहारी गुरु देव की, और खड़ा तो किया ही नहीं पहले बनिहारी गुरु कैसे होगी? बिना बेटे के बाप कैसे हो जाएगा? हो जाएगा कोई शरीर भले पहले जो बाप तो ही होगा ना, बाप तो बेटे से ही होगा, ऐसे गुरु का कल्याण करने से ही गुरु होगा, ऐसे गुरु कल्याण नहीं करे तो वो गुरु नहीं है, असली गुरु वही है। तो सबसे पहले गुरु की महिमा है, अभी गुरु मित्र भगवान से, गुरु भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया, तो मनुष्य शरीर से नरक स्वर्ग अपवर्ग निषेध ज्ञान वगैरह सब खुला, नरक भी खुल रहा है स्वर्ग भी खुल रहा है। पर गुरु को भी ज्ञान से नरक नहीं जा सकता, स्वर्ग नहीं जा सकता, स्वर्ग भी नहीं जा सकता, मुक्ति होगी प्रेम होगा। तो गोविंद के बनाए हुए शरीर से सब कुछ हो सकता है, पर गुरु को बढ़ा दे तो बस मुक्ति होगी। इस वास्ते गुरु की महिमा अधिक है, तो अधिक है तब कि जब गुरु को परमात्मा की प्राप्ति करा दे। ऐसे ही नहीं है, हम किसी दुकानदार के यहाँ जा रहे हैं और कहते हमारा ऐसा बढ़िया कपड़ा चाहिए, कैसा कह लो पैसा पहले 100 रुपया दे दिया कि हम कपड़ा लाओ, कपड़ा तो वो है ही नहीं, और वो नहीं हमारे जगह नहीं आए, कैसे ले रुपया, कैसे ले रुपया नहीं लाओ कपड़ा, वो कपड़ा है नहीं, तो जगह में क्या दिखा। ऐसे गुरु जी के स्तर पर जावे तो गुरु जी परमात्मा की प्राप्ति करा दे तब तो ठीक है, ये तो चेला को बना दिया प्राप्ति करा ही नहीं, यही क्या बात है, भेड़ ले ली चेला बना दिया तब भी प्राप्ति करा ही नहीं, कपड़ा दिया ही नहीं, तो पैसा क्यों ले लिया हमने, पैसा नहीं देना था, फिर हमारे कपड़ा है नहीं भाई, सीधी सादी बात है, चेला बना लिया इधर कर ही नहीं। गुरुवो बहवो लोके शिष्य हितापहारका, दुर्लभ स गुरु लोके शिष्य हितापहारका, चेले के धन को लेने वाले गुरु बहुत भी लगे हितापहारका, पर दुर्लभ गुरु जो हिताप है हृदय के ताप को दूर कर दे, हरी धन बिछा दे, तो वो गुरु है। गुकारस्थ अंधकारस्थ रुकारस्थ कर विरोध कर अंधकार हृदय का अंधकार बचा ले बिल्कुल, तब वो गुरु होता है। उसका अंधकार मिटाने से गुरु होता है, बेटा होने से बाप होता है, बेटा वही नहीं बाप कैसे हो जाएगा, ऐसे गुरु होता है शिष्य होने से, शिष्य होता है परमात्मा प्राप्ति करे तब। अब संघ माँ बाप का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, जीव है गुरु का संबंध जोड़ लिया, ठीक है ये भी संसार का संबंध है, तमाशा है, गुरु ऐसा नहीं होता है। गुरु की महिमा गोविंद अधिक है, गोविंद से अधिक है, ऐसी बात है। रे नर हरिशो रे जन हरिशो प्रीति कर हरिजन सो कर हित, हरी हेरिया सगड़े मिले हरि में कहिए कौन, हरि जी जय, हरि जी जय जग देत है, हरि जी जय जग देत है, और हरिजन हरि ही देत बोलो भगवान, ये जग दे गए शरीर दिया उसे नरक स्वर्ग जाओ जी ले जाओ, गुरु जी भगवान दे दे तो रह जाएगा मेरा काम है नारी दे।
भगवान ने अर्जुन से कहा कि सभी धर्मों छोड़कर मेरे शरण में आ जाए, ये बड़ी गोपनीय बात है, क्या इससे भी गोपनीय बात गुरु जी कान में कहते हैं,
ना वो यही बात कान में कहना को गोपनीय बात है, तो भगवान ने गोपनीय कहा सर्व को यह तमम पहले कहा, मन मना भव से पहले सर्व गुह तब ये दबिया है, उसमें दो श्लोक कहे फिर निंदे नाथ अवस्था है झकड़ोर ले लिया, न भलता है कदाचन ना चलो इनको मत कहना, तो सर्व गुह तब कहता हूँ ऊपर दो श्लोक कर झकड़ लगा दिया, अरे को नहीं कहना ये बात, ये बात कठोर दान में
वैष्णव साधु शिव साधु शैव साधु वैष्णव साधु इनको पैसा छूना उचित है या नहीं भगवत दृष्टि से,
भाई पैसा साधु को छूना उचित नहीं बताया है, पर सन्यासी के लिए विशेष निषेध होता है, वैष्णवों के लिए इतना निषेध आया नहीं, कहीं आया होगा पता नहीं है। त्याग करे है तो पैसा और स्त्री दो का तो त्याग करना चाहिए ना, और अग्नि अग्नि भी सुलगावे आपसे सूर्य बनावे, अग्नि का त्याग स्त्री का त्याग पैसों का त्याग मुठूगी नहीं, तो वो सन्यासी त्याग ही होता है। ऐसी आई ये बात हुई, हम कोई करते हैं जो भगवान जाने क्या करते हैं, शादी सुख अपने को हाथ जोड़े।
सत्संग और संत संग इनमें क्या फर्क है, समझाने बताएं।
सत्संग है, संत संग भी सत्संग है, और परमात्मा का प्रेम भी सत्संग है। परमात्मा के साथ संबंध है वो असली सत्संग है। दूसरे देखो, सत्कर्म है, सत चर्चा है, और सत चिंतन है, और सत्संग है, चार हुए। सत्संग संग होगा खुद का, सत में ही तल्लीन हो जाए तो संतों के संग से हो जाओ, गुरु के संग से हो जाओ, शास्त्रों के संग से हो जाओ, विचार के द्वारा हो जाओ। तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भी मन भगवान में लग जाए, भगवान में तल्लीन हो जाए, सुखी हो जाएगा। तो सत परमात्मा है, उसका संग है, वही सत्संग है, उनका प्रेम है, वो बढ़िया है। कोटिकाओं में लिए आते हैं कि ये नोपाशीत महात्मा आया है, महात्मा को संग दिया, कोटिकाओं ने महात्मा को संग नहीं दिया, ने यज्ञ किए, ने दान किए, ने तप किया, कोई त्याग किया, तो क्या कि भगवान का प्रेम हुआ, सत्संग हो गया। भागवत में खूब लिखा है, नाम लिखा पार्थ काया धवा दिया, संगान मामी दिशा केवल संग रहे, वह संग मतलब है भगवान में प्रेम, भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान में चल लगे, सब हो गया पूरा, वह सत्संग हो गया, गुरु भी हो गया, शास्त्र भी हो गया, वेद भी आ गया, पुराण भी आ गए, सब आ गए। वेद सर गई अहम एवं विद्या, संपूर्ण वेदों के द्वारा जानने लगे परमात्मा ही है, अब परमात्मा से प्रेम हो गया, अब मेरा पार है, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, काम बढ़ गया, जिसका ये अंश है उसी में लग गया, वह काम हो गया, तो वो सत्संग है, और सत्कर्म है, सत्चर्चा है, सत्चिंतन है, और सब अपनी सत्चर्चा होती, सत्चिंतन होता है, सत भगवान में प्रेम होता है।
कृष्ण में रहकर जीव के मोक्ष के लिए कौन सा साधन श्रेष्ठ और सरल है?
कृष्ण में गृत में रहते हुए, गृत में जो सेवा है, सुलभ है, सबसे बढ़िया है। कर्म संन्यासात कर्म योग को विशेष देते, कर्म योग को विशेष होता है, तो गृहस्थ में रहते हुए सेवा का मौका मिलता है। माँ बाप की सेवा करो, भाई भतीजे भाई की भौजाई की सेवा करो, और स्त्री पुत्र का पालन करो, ये खास कुटुंब है, चाचा ताऊ उनका पालन करो, बस बड़ों से होगा कि उद्धार सुधार करो, और गांव का भी सुधार करो, प्रांत का भी करो, देश का भी करो, सबका उद्धार करो, ये काम है। परंतु खास कर कुटुंब भी है, माता पिता भाई भौजाई भतीजे स्त्री पुत्र ये खास है, कुटुंब भी चाचा ताऊ भी कुटुंब है, तो इनकी सेवा करने का मौका गृहस्थ में अच्छा रहता है। ऐसे ब्रह्मचारी के वो नहीं रहता, और वानप्रस्थ के नहीं रहता, सन्यासी के नहीं रहता, गृहस्थ का अच्छा है। अच्छा साधु संग उपास सत्म धन्यो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थम सबका माँ बाप, ब्रह्मचारियों का भी माँ बाप गृहस्थ है, और गृहस्थों का माँ बाप भी गृहस्थ है, और वानप्रस्थों का माँ बाप भी गृहस्थ है, और साधु संन्यासियों का माँ बाप गृहस्थ है, पैदा करने वाला और पालन करने वाला गृहस्थ है, पहला ये करे पालन भी ये करे, तो गृहस्थाश्रम है ये श्रेष्ठ, तो सेवा का मौका गृहस्थाश्रम में बढ़िया लगता है, और सेवा द्वारा कल्याण हो जाए। भगवान ने अर्जुन को यही कहा है। भगवान भी ग्रस्त थे, अर्जुन भी ग्रस्त थे, गीता कहने वाला भी ग्रस्त, गीता सुनने वाला भी ग्रस्त। हम लोगों ने तो पई उठा ली अपने गीता जी है, तो आपका लगता है ग्रस्तों का लगता है। मेरे को तुम्हारी क्या अधिकार गीता का, क्योंकि गीता वक्त तक सुना जा रही श्वास रानी अर्जुन की कई रानियां थी, तो भी होते गीता का अधिकारी सुनाने के सुनने के। बाबा जी कहाँ दिए बताओ, सुनाने वाले साथ दो भाई सुनने वाले हुए, तो हमने तो ले दिया अपने गीता ठीक है, गीता है आप लोगों की। हम लोग आपसे रोटी लेते हैं, आपसे कपड़ा लेते हैं, आपसे मकान लेते हैं, आपसे किराया लेते हैं, आपसे पुस्तक लेते हैं, तो गीता भी आपसे लेते हैं। हम तो लेने वाले हैं कानपुरी कोठी है, ये गीता वन पढ़ाने का कुछ भी कानपुरी कोठी है, उसमें शेर चलते थे, रात्रि में आधे जो चबूतरा है उस पर सत्संग होता था। तो एक दिन सेठ बोले अपने को स्वामी जी कैसे मिले, कैसे स्वामी जी मिले, सत्संग करा पे कुछ लेते भी नहीं और स्वामी जी बहुत अच्छे मिल गए, अपने कैसे स्वामी जी मिले। और मैंने बोला सेठा हमारे को जैसे सेठ मिले ऐसे आपको स्वामी जी नहीं मिले। हमारा सेठ रोटी भी देवे, कपड़ा भी देवे, मकान भी देवे, पुस्तक भी देवे, किराया भी देवे, ज्ञान भी देवे, बाबा जी ज्यादा है जो हमारे पास। आपको याद है कि नहीं, आपसे सेठों की कृपा है, तभी तो आज बात सुनाते पड़े, निशंक निर्भय होकर के बात सुनाते हैं। सीता मऊ दरबार के सामने मैंने कहा कि जो हम ऊंची ऊंची बात सुनाते हैं उसमें हमारे कुछ सारी आती है, समझो समझ आती है कि छोटे मुंह बड़ी बात बड़ी ऊंची ऊंची बात कर देते हैं और हमारे को पूछते दुखिया हो तुम है, तो छोटे मुंह बड़ी बात ऊपर नहीं है, बड़ा हुआ है वो बड़ी बात कहे, हम तो छोटे मुंह कहते हैं, कहें निशंक हो शंको नहीं करना, कि अपनी बात थोड़ी है, बात भगवान की। एक बात मैंने सेठ जी से पूछी, अब आपके सामने हमारी पोल निकल जा रही होती बात हमारी पति हो जा रही। सेठ जी को मैंने कहा कि सेठ जी आप जो प्रश्न का उत्तर देते हैं उसमें उत्तर मैं बढ़िया देता हूँ, अब बोलो मैं बढ़िया देता हूँ, क्या करूँ मेरे आ जाता है, मैं बढ़िया देता हूँ, मैं बढ़िया कहता हूँ, जो पूछने शेठ जी से पूछे तो शेठ जी उत्तर देते थे, मेरे पूछे मैं उत्तर दू, तो जनता को मेरे से संतोष ज्यादा होता है, तो मैं आपसे उत्तर बढ़िया देता हूँ। अब मैं क्या करूँ, मेरा अभिमान आता है कि मैं शेठ जी से बढ़िया बोलता हूँ, क्या करूँ, कोई उपाय बताओ। शेठ जी पूछा तो शेठ जी कहा कि सीखे किससे हो, सीखे किससे हो, हम समाधान हो गया। बढ़िया बात दे रहे तो बढ़िया कैसे होगा, शेठ जी सीखे किससे हो, आई किससे, ये बढ़िया बात कहाँ आई तुम्हारे पास, आई तुम्हारे से, किस बात का अभिमान, अपने हसी बात करते हैं सर। उस शेठ जी से बातें सीखी अपने बहुत बहुत सीखी, शेठ जी इतना प्यार से सिखाते थे, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं पद गाता ना, मैंने गाया एक दिन पद, मैं तो गोविंद गुण गा शाही मैं हिंदू जब हो गया
के रानो जी रूठ तो मारो कोई करल सी मैं तो गुण गोविंदरा गाशो हे माया रानो जी रूठ तो मारो
ये पद नहीं आना सबक कह दिया बोलो मैं भक्ता गाने वाला जिसका मालूम पर दी सभा में कारण क्या राणा जी रूढ़े तो माए कारण और तो पकड़ में उगाया भगवान ने गुण गाना भूल दिए थे उन्दू रोजे थी ऐसी बात नहीं कर रही ये सिखाता मेरे सभा में कहने देखो सब ऐसे नहीं करना ऐसे सीखा सीखा तैयार कर दिया मेरे को दिन शुरुआत है राणा जरूर से मारो कहीं कर सी मारे पति जरूर से मारो कहीं कर सी वो दिन हो जैसी असली बात पकड़े रही है गुण गोविंद का गाय से हुए तो राणा जरूर से मारो कहीं कर सी उन भी पकड़ रही है इसको आहुत न हो जाए सेना की बहुत सावधानी पढ़ने में लिखने में पत्र लिखने में बहुत दूसरे सावधानी सर जब मैं पत्र लिखता हूँ उसका असर अभी क्या पड़ता है 10-20 वर्षों में 100 वर्षों के बाद क्या असर पड़ेगा 200 वर्षों से क्या पड़ेगा इसका असर ऐसे समझे पत्र लिखता हूँ कहा था
लिखाते
वक्त कहा इसका आज क्या असर पड़ेगा 10 वर्ष क्या पड़ेगा 100 वर्ष के बाद क्या असर पड़ेगा इतने मेरे दृष्टि रखी मैं सब नहीं खाता हूँ काम भी करता हूँ किसी को कौन इतना सावधान रहता है ऐसा मैं कहा सच्ची बात करती बहुत विलक्षण थे श्रेष्ठ विलक्षण है ये सब मैं शेर ही दे कितने मकान बना दिए कितने पिस लगा दिए कितना सत्संग चला दिया अब भी सत्संग चलता है फिर ये शरीर शांत के वर्ष हो गए 28 वर्ष हो गया 28 वर्ष में जवान ऊर्जा छोड़ा तो हमें यार 28 वर्ष आ जाए तो सर जवान हो जाए अच्छा शरीर शांत हो गया देखो ये ध्यान चाहे ठेला चलाने वाला है ठेला छोड़ दो आप ही सर दूसरे दिन छोड़ दिया आप ही सर सेठ याद है ऐसे निराले सेठ को वैसा ही बिरला जन का ऐसे निराले सेठ को अभी क्या डाल सेठ को जानने वाला कोई बिरला ही होता है जापान का जीवन बनाने वाले ऊंची ऊंची धोती पहनते पगड़ी बांध ले काना में मुर्गी सेठ का वीर बेसा दे हम बोले शुद्ध बोले क्षेत्र में जैसे आदर भी करते लोग हमारे को आज से हम बढ़िया बोल रहे हैं बढ़िया लोग समझ रहे हैं और आज बोल से जो असर पड़ता कोई बिल्कुल स्थिति में स्थित है ऐसे गंभीर बोलते थे दूर से उनकी शांति से आप व्याख्यान सुनो तो ऐसा मालूम होता था मामल नहीं करते बिल्कुल स्थिति में स्थित होकर के बोलते जैसे भागवत की कथा है भागवत का जो रचना है वो समाधि भाषा है समाधि भाषा ये द्वेष नाम जन्म समाधि में स्थित कर बोलते हैं भागवत की समझ यम प्रभ्रंत कृत्रिम दही पायनो विरा पुत्र तन्मय परा तरो तम सर्वभूत मुनिमान सूर्य नमस्कार करे सुखदेव मुनि को नमस्कार करते
भागवत कहते हैं प्रब्रजन संन्यासी हो गए अपेत करी कोई करना बाकी कुछ नहीं रहा और जरूर संस्कार नहीं हुआ अपेत करते अनुपेत जात कर्म हो गए चूड़ा कर्म हो गए नाम कर्म हो गए जिन्हों संस्कार हो गए कम से कम कृति बाकी है ही नहीं सब कुछ कर दिया पुत्र 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 कहते हैं व्यास जी तो वृक्ष से पार से अति पुत्र पुत्र ऐसा समझाता है उनका तात्पर्य कि किसी जन्म का तुम पुत्र हो किसी जन्म हम पुत्र है वो पुत्र का क्या बनवा है पुत्र पुत्री तरवो भी नदु बोले सब नंगा नदी नदू तरवो भी नदू बोले तो फिर बोले ऐसे सर्वभूत है जब संपूर्ण भूतों के हृदय में जाने वाले सब के हृदय में प्राजना अंतरिया में ऐसे सुखदेव मैंने वो हम दो ऐसा दिया वो वह जाएगा तुम धातु जो माँ को कर जसमत की गति पाजी राजो मुख दे कर खराब चंदो आखिर सुंदर पर कर लाई रोजा भैया देखो भाई कितना प्रेम है इसका तुम्हें वो सोता सोता था चराचर आत्मा समिनी क्षण कोई चराचर आत्मा सब जानने वाले आगे मिलते आंखों की मिठली के ऐसी मार दो आंख मीठी मार देना वो डरना नहीं अब पाले देखे दूध तो दूध तो हृदय में प्रेम हो तो आवे हृदय में प्रेम नहीं तो ठंडे तो दूध कैसे आवे मारने की इच्छा तो दूध नहीं आपको बच्चा कर लो बच्चों दूध खेलते ही खेलता पीता खर्चा प्राण खर्चे दूध जाए कहां से तो प्राण खर्चे अरे मुंगे मुंगे अरे छोड़ दिया छोड़ दे अब छोड़े को तो मरने पर भी छोड़ना आता नहीं क्या छोड़े ऐसा थलतू से पूछना मारी वो ये अस्त्र है थलतू से पूछना मारी छोटा बच्चा वह तो चूगा है माँ बन गई ले गए गति में धातु ये श्लोक सुनाया वह जंगल में सौ सुखदेव मुनि तपस्या करते हैं अहो वकीयम स्तन काल कूसम जिहान सदा पाए दत्त साधी ले गए गति धातु सुचाम जो धाय को मिलनी चाहिए दूध की लड़ी वह वो गति मिली इसको छोड़कर किस दया दूसरा में सुनिए श्लोक आकर श्लोक कहाँ का है ये श्लोक भागवत का है तुम बोल रहे हो भागवत हमारे ब्रह्मचारी है महाराज व्यास जी के विद्यार्थी है क्या पढ़ते हैं भागवत पढ़ते हैं व्यास जी पढ़ते हो फिर गर्ज करते हैं पहले बुलंद नहीं आए अब गर्ज करते महाराज भागवत पढ़ाओ फिर वो पढ़ाओ तो भगवान पढ़ाए व्यास जी तुम्हें तो चल रही जानते ही कैसे मिलती बात ऐसा दयालु कौन है जो जहर पिलाने पर अमृत दे तो विचार करो कि जहर पिलाने वाले को सदगति दे तो दूध पिलाने माँ को क्या देंगे